का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दुराशा का दूसरा एवं अंतिम भाग। मैं बुझे हुए सिगरेट को हाथ में लेकर चित्रवत बैठा था। कहानी सुन रहा था या भाषा सुन रहा था अथवा संगीत सुन रहा था मालूम नहीं। मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। अब मुझसे और ना रहा गया। सहसा बोल उठा, जानवर। नवाब पुत्री बोली, जानवर नहीं। क्या जानवर मृत्यु की यंत्रणा के समय होठों तक आई पानी की बूंद का परित्याग करता है? मैंने अप्रतिभ होकर कहा, ठीक बात है, वह देवता था। नवाबजादी बोली, कैसा देवता? क्या देवता भक्त की सेवा का ऐसा अपमान करता है? मैंने कहा, यह बात भी ठीक है। यह कहकर मैं चुप हो गया। नवाब पुत्री कहने लगी, शुरू में तो मुझे गहरी चोट पहुंची। लगा कि सारा आसमान अचानक टूटकर मेरे सर पर आ गिरा हो। क्षण भर में चेतना प्राप्त कर उस कठोर किंतु पवित्र वीर ब्राह्मण के चरणों में दूर से ही प्रणाम किया और मन ही मन बोली, हे ब्राह्मण, तुम हीन की सेवा, पराया अन्न, धनी का दान, युवती का यौवन, नारी का प्रेम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तुम स्वतंत्र हो, तुम एकाकी हो, तुम निर्लिप्त हो, सुदूर हो। मुझे तुम्हारे निकट आत्मसमर्पण करने का अधिकार तक नहीं है। नवाब पुत्री को भूमि पर माथा टेक प्रणाम करते देखकर केशरलाल को कैसा लगा बता नहीं सकती, किंतु उनके मुख पर विस्मय अथवा अन्य कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। शांत भाव से उन्होंने एक बार मेरे मुंह की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उठे। मैंने चौंक कर सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने चुपचाप उसे ठुकरा दिया और बड़े कष्ट से उठकर यमुना के घाट पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी नाव बंधी थी, पार उतारने वाला कोई भी नहीं था। उस नाव में बैठकर केशरलाल ने रस्सी खोल दी। देखते ही देखते नाव मझधार में जाकर अदृश्य हो गई। मेरी इच्छा होने लगी कि इस व्यर्थ जीवन को यमुना के जल में समाप्त कर दूं, किंतु कर नहीं सकी। फिर निरुद्देश्य ही यमुना के किनारे किनारे चल दी। कहां जाऊंगी कुछ पता नहीं था। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैंने भी कोई बात नहीं की। काफी समय बाद नवाबजादी बोली, इसके बाद की घटनाएं बड़ी पेचीदा हैं। जीवन के इन थोड़े से दिनों में इतना तो मैं समझ गई हूं कि असाध्य, असंभव कुछ भी नहीं है। नवाब के अंतःपुर की बालिका के लिए बाह्य जगत संपूर्ण रूप से दुर्गम प्रतीत हो सकता है, पर एक बार बाहर निकलने पर चलने के लिए रास्ता अपने आप मिल जाता है। वह रास्ता नवाबी पथ भले ही ना हो, मगर पथ है। उस पथ पर मनुष्य हमेशा से चलता आ रहा है। सामान्य जनजीवन के इस पथ पर अकेली नवाबजादी का लंबा भ्रमण वृतांत शायद सुनने में सुखकर ना हो। अगर हो तो भी उन सारी बातों को कहने का उत्साह मुझ में नहीं है। संक्षेप में, अनेक दुख, कष्ट, विपत्ति और अपमान सहने पड़े हैं, फिर भी जीवन असहनीय नहीं हुआ। आतिशबाजी के समान जितना जला उतनी ही तेज गति प्राप्ति हुई। जब तक वेग से चल रही थी, जलने का बोध नहीं था। आज अचानक वह परम दुख और चरम सुख की आलोक शिखा बुझ जाने पर इस पथ की धूल के ऊपर जड़ पदार्थ की भांति गिर पड़ी हूं। आज मेरी यात्रा का समापन हो गया, यही मेरी कहानी भी समाप्त होती है। इतना कहकर नवाब पुत्री मौन हो गई। मैंने मन ही मन सिर हिलाया, कहानी का अंत तो किसी तरह भी नहीं हो सकता। कुछ देर चुप रहकर मैं टूटी फूटी हिंदी में बोला, गुस्ताखी माफ कीजिए, बात की बातें जरा खोलकर बताएं तो गुलाम के दिल की बेचैनी काफी कुछ कम हो सकती है। नवाब पुत्री हंसी। मैं समझ गया मेरी टूटी फूटी हिंदी का असर हुआ है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात कर पाता तो मेरे सामने उनकी लज्जा ना टूटती, पर मैं उनकी मातृभाषा बहुत कम जानता हूं। यही हम दोनों के बीच एक बड़ी दूरी है, यही एक पर्दा है। उन्होंने फिर कहना आरंभ किया, केशरलाल के समाचार मुझे पराये मिलते रहते थे, पर किसी प्रकार भी उनसे मिल नहीं पाई थी। वे तात्या टोपे के दल के साथ मिलकर उस क्रांति से आच्छादित आकाश के नीचे कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी ईशान में, कभी नैऋत्य में वज्रपात की तरह क्षण भर के लिए टूटते, फिर अदृश्य हो जाते थे। उस समय मैं योगिनी बनकर काशी के शिवानंद स्वामी को पिता कहती थी और उनके निकट संस्कृत शास्त्र का अध्ययन कर रही थी। भारतवर्ष के सभी समाचार उनके चरणों में आकर एकत्रित होते थे। मैं भक्ति भाव से शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करती और करुण उद्वेग के साथ युद्ध के समाचार संग्रह करती थी। धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने हिंदुस्तान की विद्रोह की ज्वाला को पैरों तले रौंदकर बुझा दिया। उस समय सहसा केशरलाल के समाचार मिलने बंद हो गए। भीष्म प्रलय के आलोक की रक्त किरणों में भारतवर्ष के सुदूर प्रांतों से जो वीर मूर्तियां शन-शन दिखाई दे रही थीं, अचानक वे सब अंधकार में विलीन हो गईं। तब मुझसे और ना रहा गया, गुरु का आश्रय त्याग कर भैरवी के वेश में फिर बाहर निकल पड़ी। एक पथ से दूसरे पथ पर, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, मठों में मंदिरों में घूमती रही। कहीं केशरलाल का कोई समाचार नहीं मिला। दो एक व्यक्तियों ने जो उसका नाम जानते थे बोले, उसे या तो युद्ध में या राजाज्ञा से मृत्यु प्राप्त हुई है। मेरी अंतरात्मा ने कहा, कभी नहीं, केशरलाल की मृत्यु नहीं हो सकती। वह ब्राह्मण, वह असहनीय ज्वलंत अग्नि कभी नहीं बुझ सकती। मेरी आत्माहुति ग्रहण करने के लिए वह अब भी किसी निर्जन यज्ञ की वेदी पर उधर्व शिखा के रूप में जल रही है। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा शूद्र ब्राह्मण बना है। मुसलमान ब्राह्मण बन सकता है या नहीं, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्राचीन काल में मुसलमान थे ही नहीं। मैं जानती थी कि केशरलाल के साथ मेरे मिलन में बहुत विलंब है, क्योंकि उससे पहले मुझे ब्राह्मण बनना होगा। एक एक करके 30 वर्ष बीत गए। मैं अपनी आत्मा से, बाहर से, आचार व्यवहार से, मन वचन कर्म से ब्राह्मण बन गई। मेरे उस ब्राह्मण पितामही का रक्त पवित्र तेज के साथ मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगा। मैंने मन ही मन अपने यौवनारंभ के प्रथम विप्र, अपनी यौवन समाप्ति के अंतिम विप्र, मेरे तीनों लोकों के एकमात्र विप्र के चरणों में स्वयं को संपूर्ण रूप में निसंकोच भाव से प्रतिष्ठित कर एक अपूर्व आभा प्राप्त की। युद्ध और क्रांति के दरमियान केशरलाल की वीरता की अनेक गाथाएं मैंने सुनी, किंतु वे बातें मेरे हृदय पर अंकित नहीं हुई। बस वही चित्र की शांत चांदनी रात में, शांत यमुना की धार में, एक छोटी सी नाव पर सवार अकेले केशरलाल चले जा रहे हैं, मेरे हृदय पटल पर अंकित हो चुका था। मैं हर पल बस यही देखा करती कि ब्राह्मण निर्जन स्रोत पर सवार दिन रात किस अनजान महारहस्य की ओर भागा जा रहा है। उसका कोई साथी नहीं, सेवक नहीं, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। वह निर्मल आत्मनिमग्न पुरुष स्वयं अपने में पूर्ण है। आकाश के ग्रह, चांद, तारे उसे चुपचाप निहार रहे हैं। इसी बीच समाचार मिला कि केशरलाल ने राजदंड से पलायन कर नेपाल में आश्रय लिया है। मैं नेपाल गई। वहां बहुत दिन रहने के बाद समाचार मिला कि काफी दिन हुए केशरलाल नेपाल छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। उसके बाद से मैं पहाड़ों में ही घूम रही हूँ। ये हिंदुओं का देश नहीं है। भूटिया और लेपचा लोग मलेच्छे हैं। इनके आहार व्यवहार में कोई सद्विचार सदाचार नहीं है। इनके आराध्य देव, इनकी पूजा और अर्चना की विधि सब कुछ भिन्न है। अनेक दिनों की साधना के द्वारा मैंने जो विशुद्ध शुचिता प्राप्त की थी, मुझे भय होने लगा कि कहीं उसमें इन लोगों का थोड़ा भी प्रभाव न पड़ जाए। मैंने हर संभव चेष्टा से अपने को हर प्रकार के मलिन स्पर्श से बचाकर रखा। मैं जानती थी कि मेरी नाव किनारे आ लगी है, मेरे जीवन का चरम तीर्थ निकट ही है। उसके बाद और क्या कहूं, शेष बातें बहुत कम है। दीप जब बुझता है तो हवा के एक ही झोंके से बुझ जाता है। इस बात की और लंबी व्याख्या क्या करूं? 38 साल बाद इस दार्जिलिंग में आकर आज सुबह मैंने केशरलाल को देखा। वक्ता को यहां चुप होते देखकर मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या देखा? नवाब पुत्री बोली, देखा वृद्ध केशरलाल भूटिया बस्ती में भूटिया पत्नी तथा उसके पोत्र पोत्रियों को लेकर मैले कपड़े पहने मैले आंगन में भुट्टों के दाने निकाल रहा है। कहानी समाप्त हुई। मैंने सोचा सांत्वना के कुछ शब्द कहने चाहिए। मैं बोला, 38 साल तक लगातार जिसे प्राणों के भय से रात दिन विजातियों के साथ रहना पड़ा हो, वह भला अपने आचार की रक्षा कैसे कर सकता है? नवाब कन्या बोली, क्या मैं यह नहीं समझती? पर मैं इतने दिन किस मोह में घूम रही थी? जिस ब्राह्मणत्व ने मेरे किशोर हृदय का हरण किया था, क्या मैं जानती थी कि वह केवल अभ्यास और संस्कार मात्र था? मैं तो समझती थी वह धर्म था, अनादि था, अनंत था। यदि ऐसा न होता तो 16 वर्ष की किशोर अवस्था में पिता के घर से पहली बार बाहर निकलकर उस चांदनी रात में अपने विकसित पुष्पित भक्ति के वेग से कंपित तन मन और प्राणों के समर्पण के बदले ब्राह्मण के दाहिने हाथ से जो कठोर अपमान मिला था, से गुरु के हाथ की दीक्षा समझ के चुपचाप सिर झुकाकर दुगने भक्ति भाव से क्यों मैंने शिरोधार्य कर लिया? हाय ब्राह्मण, तुमने तो अपने कार्य के बदले दूसरा कार्य प्राप्त कर लिया। मुझे अपने एक यौवन एक जीवन के बदले दूसरा जीवन यौवन फिर कहां मिलेगा? यह कहकर रमणी उठ खड़ी हुई, बोली, नमस्कार बाबूजी, क्षणभर में ही मानो संशोधन करके कहा, सलाम बाबू साहब। इस मुस्लिम अभिवादन के द्वारा उसने मानो जीर्ण नींव वाले धराशायी भग्न ब्राह्मणत्व को अंतिम विदा दे दी। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह उस हिमाद्री शिखर के धूसर कोहरे की राशि में मेघ की भांति खो गई। मैं पल भर के लिए आंखें बंद करके पूरी घटनावली को मानस पटल पर चित्रित करके देखने लगा। आंखें खोलकर देखा, बादल अचानक फट गए थे और सिनग्ध धूप से निर्मल आकाश चमक रहा था। हथरिक्षाओं पर अंग्रेजी स्त्रियां और घोड़े पर सवार अंग्रेज पुरुष वायु सेवन के लिए निकल पड़े थे। बीच बीच में दो एक बंगालियों के गुलबंद से ढके चेहरे मुझे जिज्ञासा एवं व्यंग से देख रहे थे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जो कुछ भी देखा सुना था वह सब अब सत्य प्रतीत नहीं हो रहा था। लगता था मानो मैंने कोई कल्पना बुनी थी। वह मुसलमान ब्राह्मणी, वह ब्राह्मण वीर और यमुना के किनारे का वह किला, सब कुछ मेरी कल्पना मात्र थी। जो कुछ पलों के लिए मेरे समक्ष चित्रित हो उठी थी, अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी दुराशा का दूसरा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।